दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली यानी हिंदू संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी महिला भी परिवार की कर्ता हो सकती है। इसे कई हलकों में एक ऐतिहासिक जजमेंट बताया जा रहा है। तो इस फैसले और इसकी महत्वता के बारे में और जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील अनीता बाजरा से बात की।
ये जजमेंट एक बिजनेस कम्युनिटी की सबसे एल्डेस्ट डॉटर ने डाला था कि चार भाई थे, उसमें से चारों एज अब एक्सपायर हो गए, इंक्लूडिंग फादर एंड थ्री अंकल्स। तो उनके कजिन बोल रहे कि मैं मैनेजमेंट, जो भी प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप एंड पजेशन, उसका जो मैनेजमेंट है उसका सूत्रधार मैं रहूंगा। लेकिन इस लड़की ने कहा कि 2005 में, मैं कहूंगी दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो 2005 में हिंदू सब्सिडियन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई थी कि लड़के को भी लड़के का, वेदर मैरिड और अनमैरिड, उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे इसके साथ ही, बेटे के साथ ही। तो बेटा बेटी में अंतर नहीं किया था। तो ये जो जजमेंट है ये सेक्शन जो 6 में अमेंडमेंट 2005 में, उसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन नहीं, उसी को अच्छे से मैं कहूंगी उसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब वो लड़की इक्वल राइट ले रही है, अब उसको बदले का बोलते ना, जो मॉडिफाइड लॉ हो गया है हमारे देश में, भारत में, उसके हिसाब से जब वो इक्वल राइट ले सकती है वो प्रॉपर्टी में, वो कोपासनर भाई के जगह उसको भी बनाया गया है, तो ओनरशिप भी ऑब्वियसली उसको चले जाती है, मैनेजमेंट भी जो फैमिली प्रॉपर्टी है वो चली जाती है और वो करता होगी। इस जजमेंट का यही कहना है कि इसमें जो भी एल्डेस्ट होगी वुमेन, और इसमें पैटर्नल होगा और मैटर्नल में बेटियां भी आ गई, जैसे अगर माँ जिंदा है तो माँ भी कर्ता बन सकती है, अगर माँ नहीं है तो उसके एब्सेंस में सबसे बड़ा बच्चा उसका, तो बड़ा बच्चा यानी जो उसका बड़ा जो सबसे पुत्र होगा या पुत्री होगा। अब इस केस में ऐसा होगा कि बेटी है तो वो भी ये बन सकती है, बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट टू इक्वालिटी, वो आज सच्चे अर्थों में बोलते हैं, मतलब हमारे देश में आज इसको कायम कर दिया गया इस जजमेंट के द्वारा कि अगर उसको इक्वालिटी आपने उसको प्रॉपर्टी राइट्स में दे दी है तो कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसको रोक सकता कि वो कर्ता बने। तो मतलब माँ के बाद उसका सबसे बड़ा बच्चा, तो बड़ा बच्चा में बेटा और बेटी का अंतर नहीं होगा। तो मैं कहूंगी ये बहुत अच्छी नींव डल गई है परिवार के लिए कि बड़ी बेटी वो खुद भी, और इसका बदले परिवेश में हम देखें तो लड़कियां पढ़ी लिखी भी होती है, पहले के जमाने में अलग बात थी, उनको बाहर के बिजनेस की समझ नहीं थी, ये सब बातें भी देखी जाती थी एंड लॉ वैसा था। लेकिन आज के जमाने में लड़की बाहर आकर काम कर रही है, खुद भी बिजनेस संभाल रही है, इस बदले परिवेश में ये मतलब जो जजमेंट आया है वो परिपूर्ण है।
जी अनीता जी, और ये बताइए कि ये जॉइंट फैमिली के लिए भी लागू होता है ये?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये हिंदू सक्सेशन नहीं, जो हिंदू लॉ है जिसको, जिसे हिंदू गवर्न्स होते हैं, जिनकी जिसमें मतलब सिख आ गए, जैन आ गए, सारी कम्युनिटीज आ गई जो हिंदू लॉ फॉलो करते हैं, उनके घर में अगर कोई भी, वो फिर लड़की शादीशुदा है, विडो है या फिर विधवा माँ है, ये सारे के सारे अब इस एक ही लाइन में बैठ गए उस पर कि वो कर्ता करके कौन होगा। तो कर्ता पहले जो कर्ता का डेफिनेशन था का एल्डेस्ट मेल मेल ऑफ द फैमिली, अब हो गया एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, इसको मेल फीमेल ये अभी अंतर निकाल दिया गया इस जजमेंट की वजह से। और ये सेक्शन 6 2005 में अमेंडमेंट हुई की तो बेटियों को भी मतलब शादी के बाद भी इक्वल राइट मिलेगा, वो वीडो हो या नहीं हो, पहले वीडो को अलग अधिकार थे, शादी बिना हुई लड़की को अलग अधिकार थे जो अनमैरिड डॉटर थी, लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट बदलाव आया हिंदू लॉ में हमारे देश में, उसमें ऐसा कहा गया था कि लड़की को इक्वल राइट्स मिलेगा प्रॉपर्टी में या हर चीज में। अब इस कर्ता आने से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो गया, मैं ऐसे कहूंगी, इसके से वो शादी हो चुकी है, शादी नहीं हुई है, वो कहीं और रहती है, इसका कोई संबंध नहीं रहेगा उसको, हर तरीके से वो अगर एल्डेस्ट बच्चा है फैमिली का, एल्डेस्ट लीगल हेयर है, तो लड़का है लड़की ये नहीं देखा जाएगा, उसको पूरी तरह से वो प्रॉपर्टी का अफेयर्स करने का उसको ही सिग्नेचर का अधिकार होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि कर्ता का मतलब ऐसा नहीं कि उसको फुल ओनरशिप जाती है, उसको मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फैमिली कहा जाता है। इन जो करता लड़का हो या लड़की हो, इसको बहुत अलग तरीके से भी कुछ लोग लेते हैं कि उसको सारा अधिकार मिल गया. नहीं, शी हेल्ड, शी और ही, हूएवर इट इज, एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली इज होल्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द और ऑल द जो भी मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द फैमिली, ऐसा मेन पर्सन, ऐसे इन द ट्रस्टी, ऐसे ट्रस्टी, एंड वो उनका पूरा कॉन्फिडेंस होगा. उसकी उसको चैलेंज कब किया जा सकता है, जब उनका कोई एक्ट, लड़का हो या लड़की जो भी ऐसा करता करेगा, वो अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द फैमिली होगा तभी. तो मतलब अगर वो फैमिली के कल्याणकारी का, मतलब फैमिली का आगे कल्याण हो, कुछ वेलफेयर ऑफ द फैमिली के लिए, कुछ बिजनेस के लिए अच्छा करे, फैमिली के बचे हुए लीगल एयर्स के लिए अच्छा करे, तो उसको कुछ चैलेंज नहीं कह सकता. उसको फुल अथॉरिटी, अनलेस कोई कोपासनर लड़का दूसरा नेक्स्ट कोपासनर आगे बोलो कि इन्होंने जो काम किया है वो फैमिली के अगेंस्ट किया है,
जी
फैमिली के वेलफेयर के अगेंस्ट किया है.
मतलब कर्ता,
तो इसका
जी मतलब जो कर्ता की परिभाषा है वो ये है कि जो जो परिवार होगा उसके चीजों को मैनेज करेगा, प्रॉपर्टीज या संपत्ति को मैनेज करेगा. ऐसा नहीं है कि पूरा इनहेरिटेंस उसको मिलेगा, सिर्फ मैनेज करने के लिए ये होगा.
हाँ 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 हाँ, मतलब वो मुख्य प्रवाह होगा, वो मुखिया होगा, मतलब उसको सम्मान दिया जाएगा. तो ये एक तरह से इस कानून ने बहुत अच्छा सम्मान दे दिया है. मतलब इस नया, मतलब एक कानून ऑलरेडी था लेकिन इसको इवैल्यूएट किया गया, सेक्शन 6 को मैं बोलूंगी एक्सटेंड किया गया, ऐसे कहना भी गलत होगा, कि इसको स्पष्ट कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि जब आपने उसको इक्वल अधिकार दे दिया है तो देर इज नथिंग इन लॉ विच प्रिवेंट हर फ्रॉम बीइंग द कर्ता ऑफ द फैमिली. अगर वो सबसे बड़ी बहन है सब भाइयों में तो उसको भी कर्ता कहेगा. और बदले परिवेश में मैंने कहा कि अब लड़कियां पढ़ी लिखी होती है तो नथिंग कम्स इन देयर वे कि वो क्यों करता नहीं सकती, उसमें क्या क्वालिटी कम है. पहले के जमाने में हो सकता है वो पढ़ती नहीं थी, वो बाहर जाती नहीं, उनको बिजनेस की समझ नहीं थी, लेकिन अब वो जमाना भी बदल गया तो बदले परिवेश में ये बिल्कुल ठीक है कि उसको कर्ता का स्वरूप दिया गया. और ऐसा कर्ता वो परिवार का वो मुखिया करके हेड करेगी.